मेरी बातियां बातियां बातियां
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।
काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठे हो।
काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीणेरी बातें। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी होरी सबली समस्या नो समाधान।
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
धीणेरी बातें, धीणेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाइया ने हरकू भाई और
रुक्मी काकीरा गणान गणा
राम राम सा राम राम रुक्मी काकी
राम राम हरकू भाई राम राम हरकू भाई थाने राम राम और धीणेरी बातें सुनन वाले सगले प्रदेश के पशुपालक ने भी अपना गणान गणा
राम राम
हरकू भाई। हाँ। एक बात बताओ सगड़ा पहला मने तो
कई
चित्रामरा घोड़ा दौड़े है कहीं?
अरे काकी एक चावल री खीर बने तो चित्रामरा घोड़ा दौड़े।
आई तो समझाऊ हरकू भाई सगला ने के बातारा ब्याड़ू और तिल्लारा सोगरा नहीं हुए।
हाँ काकी, और मैं तो थानी बात याद रखू की काम ही कर मैं काम सु बड़ी पूजा की नहीं है।
सोला आना खरी कही हरकू भाई अवसर चूके ने मौसर नहीं मिले।
अरे काकी एकर तो रुको, देखो थे मैंने समझदार क्यों नहीं
वो तो थे हुई
है नी। तो काकी सुनो थाने और सगले पशु पालका ने बताऊं काल 16 ही
बात ही
और काल मने एक अवसर मिलियो और भी अवसर ने मैं चूक्यो कोनी।
पर एक बात बताओ कि 16 ही अवसर मिलियो इन्हें मैं चूक्यो कोनी इया पहले कहीं बुझाओ सगला ने जटा जट बताओ। अब देखो मान तो खटा हुआ कोनी।
अरे धीरज रखो खटाओ रखो से बतासू अच्छी तरह बतासू।
हरकू भाई थे राजी हो तो माने कद राजी करोला झट करता बोलो कनी।
अरे बताऊ बताऊ रुक्मी काकी अवसर हो राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर हो पहलो दीक्षांत समारोह और मने लगे की पूरा प्रदेश रा पशुपालक राजू वासरो परिवार है।
वो तो है हरकू भाई।
तो देखो जने अवसरी जानकारी भी तो धीणेरी बातें सुनने वाला जिका भी पशुपालक है भाई है अभी याने होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
सोला आना खरी कही हरकू भाई परिवार ने जे किनी अवसरी जानकारी नहीं हुई जने किनने हुई।
हाँ देखो ये तो अच्छो कार्यक्रम हो तो इन जानकारी जितना भी अपना प्रदेश का पशुपालक भाई अभी याने होनी चाहिए नहीं
होनी चाहिए। और हरकू भाई देखो मैं तो कहूं ही हूँ के मारक बतावे जिको धके चाले और कठे कलसू और कठे बलसू काम करना पड़े। तो आज मने लागे के थे कलसू पूरे प्रदेश रे पशुपालक सारू मोटो काम कर दियो है के हाजिर हुए भी नहीं आज सगली जानकारियां मिल जावे ला काले 16 री।
हाँ, खरी कही रुक्मी काकी। देखो रुक्मी काकी आपा एक राजू आस हालिया नी
हाली तो ही भाई
है नी याद है नी थाने। देखो बठे है विजय भवन पैलेस कॉम्प्लेक्स बठे दीवाने आम जिको का है नी जगह बठे वो भव्य कार्यक्रम रो आयोजन ही हो।
अच्छा
हाँ, और देखती मार तो जीसोरो हो गयो ओ सजोड़ो धजोड़ो है और ए लोग बैठा बैठे भाई जिका डिग्री लेवनाला ने आप वेशभूषा में बैठा पूरो गरिमामय वातावरण हो। मन ये लाग रो की ज्ञान वातावरण में आ गया हूँ। देखो शुरुआत में कहीं हो कार्यक्रम में कि राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देखो फिर हुई हो कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा पछ हो दीप प्रज्वलन और फिर यो राजुवास वंदन बठे पावना पधारिया हा राजस्थान रा राज्यपाल माननीय श्री कल्याण सिंह जी और हाजिर हा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर कुलपति प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर ए के गहलोत और पावना पधारिया डॉक्टर उमेश चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली और दूजा पावना हा डॉक्टर एन एस राठौर साहब आप उप महानिदेशक शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एहा पावना बहादुर मायने कुलपति साहब जिगा पर कर्नल प्रोफेसर डॉक्टर ए के गहलोत साहब है बिहार उद्बोधन लियो।
सर्वप्रथम मैं माननीय कुलाधिपति महोदय को पूरे राजुवास परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस समारोह में पधार कर इसे गरिमा प्रदान की। माननीय महोदय ये विश्वविद्यालय ही नहीं अभी तो बीकानेर के समस्त नागरिकों एवं राजस्थान के पशुपालकों के साथ साथ वेटरनरी फ्रेटर्निटी के लिए गर्व की बात है कि आपने 3 दिवस के प्रवास का समय इस विश्वविद्यालय को दिया है जो कि हम सब के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कल आपने विश्वविद्यालय में कन्या छात्रावास की नई विंग का शिलान्यास कर हमें प्रेरित किया ताकि हम शीघ्र ही छात्राओं की सुविधा का निर्माण करें जिससे इस परिसर की छात्राओं को बाहर नहीं रहना पड़े। माननीय महोदय, बीकानेर कैंपस के सभी छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। विश्वविद्यालय ने आगंतुक मेहमानों एवं पशुपालक भाइयों एवं बहनों के लिए एक तकनीकी म्यूजियम भी स्थापित किया है जिसका उद्घाटन भी आपके कर कर्मों द्वारा संपन्न हुआ। माननीय महोदय, पूरे राजुवास परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हमारी नवीनतम तकनीकों को इस म्यूजियम में लगातार अद्यतन करते रहेंगे। विश्वविद्यालय की यह योजना भी है कि यहाँ पर दृश्य श्रव्य सुविधाएं भी सृजित हों ताकि एक दो घंटे के समय में ही हमारे पशुपालक भाई विश्वविद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों एवं तकनीकों से रूबरू हो सके। माननीय महोदय, आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को विश्वविद्यालयों में साकार होते देखना चाहते हैं एवं 5 मई 2015 को आयोजित कुलपति समन्वय समिति की बैठक में आपने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे ई गवर्नेंस की ओर अग्रसर हों। यह विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत अधिक आगे बढ़ गया है एवं लगभग 2/3 कार्य ई गवर्नेंस के माध्यम से किए जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों के प्रवेश एवं परीक्षा से संबंधित सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं। माननीय महोदय, विद्यार्थी जब इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए फॉर्म भरता है या उस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो उस समय से ही उसके द्वारा प्रदत्त समस्त विशिष्टियां उन विद्यार्थियों के मामले में जो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल रहते हैं स्वतः विभिन्न वर्षों एवं परीक्षाओं से गुजरते हुए उसे डिग्री प्रदान करने तक कंप्यूटर सर्वर में साथ साथ चलती हैं। आज ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। यह देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसके द्वारा ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन सिस्टम से परीक्षा कॉपियों की जांच करवाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का मानकीकरण कर दिया गया है। इस तंत्र में इनबिल्ट यह व्यवस्था है कि कोई भी परीक्षक बिना किसी प्रश्न को जांचे अंक नहीं प्रदान कर सकता। यह सिस्टम न सिर्फ हाई सिक्योरिटी का सिस्टम है अपितु देश एवं विदेश में बैठे परीक्षक भी इंटरनेट के ब्रॉडबैंड अथवा डोंगल की स्पीड से भी विश्वविद्यालय के सर्वर में झांक कर परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। माननीय महोदय, हमने सभी कार्मिकों के पेरोल, पेंशन, पीएफ आदि खातों को भी कंप्यूटरीकृत कर दिया है और इसी कारण से इस विश्वविद्यालय ने सन 2050-51 तक की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना कर यह निर्णय कर लिया कि यह विश्वविद्यालय अपने आय के स्रोतों से को और बढ़ाएगा और वर्ष 2013-14 में ही राज्य सरकार को लिखित में यह दे दिया गया था कि विश्वविद्यालय पेंशन एवं इसके परिलाभों के लिए राज्य सरकार से कोई फंड प्राप्त नहीं करेगा। माननीय महोदय, ऐसा करने वाला यह देश का संभवतः प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। हमने कार्मिक पोर्टल एवं विद्यार्थी पोर्टल भी स्थापित कर दिए हैं जहां से प्रत्येक कार्मिक एवं विद्यार्थी अपने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थी को मार्कशीट एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुरंत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर भी स्थापित किया है जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा कल किया गया है। माननीय महोदय, आपके इस दीक्षांत समारोह में पधारने से न सिर्फ विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ी है अपितु पूरी टीम राजुवास जिसमें मेरे सहयोगी अधिकारी, फैकल्टी, कार्मिक, विद्यार्थी और यहाँ तक कि पशुपालक भाई बहने भी सम्मिलित हैं, हम सबका उत्साह वर्धन हुआ है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी इस विश्वविद्यालय को इसी प्रकार अनुग्रहित करते रहेंगे। मैं आज इस पंडाल में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जिन्हें इस विश्वविद्यालय से असीम लगाव है एवं समय समय पर इसकी गतिविधियों के बारे में विश्वविद्यालय को एवं विशेष रूप से मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। राजस्थान में पशुपालन एक सुदृढ़ सेक्टर के रूप में स्थापित है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है क्योंकि राज्य में ग्रामीण आबादी 75% है। यही वह राज्य है जिसमें पशुधन का घनत्व 169 है प्रति वर्ग किलोमीटर जो दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है। इसी कारण राज्य में पशुपालन का टिकाऊपन दूसरे राज्यों से अधिक है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें पशुधन एवं मानव आबादी का अनुपात लगभग 85:100 है जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारे लिए पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपालन क्षेत्र के राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हुए इस राज्य में पशु चिकित्सकों की आवश्यकता दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के संज्ञान में मैं यह लाना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात पशु चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत सुधार हुआ है। मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हम देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय से पीछे नहीं हैं। मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि परिषद ने बीकानेर एवं वल्लभ नगर कॉलेजों में स्नातक प्रवेश सीटें 100-100 करने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही परिषद ने PGIVR जयपुर में स्नातक प्रवेश हेतु निरीक्षण भी करवा लिया है। आपके इस कार्यक्रम में शरीक होने से विश्वविद्यालय में उत्साह का संचार हुआ है एवं हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपके बीकानेर प्रवास के दौरान प्रत्येक मिनट का उपयोग कर हम हमारी गतिविधियों से आपको रूबरू कराएं ताकि इस विश्वविद्यालय के नवाचार आपके माध्यम से दूसरे विश्वविद्यालयों में भी किए जा सकें। आपके पदभार संभालने से परिषद में सकारात्मक सोच विकसित हुई है जिसे देश का हर व्यक्ति जो पशु चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा है महसूस कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त वित्त पोषण कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। मैं आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन से राज्य के पशु चिकित्सा एवं कृषि विश्वविद्यालयों को नई ऊर्जा मिलेगी और मैं टीम राजुवास की ओर से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा के मानदंडों को अपनाने में यह विश्वविद्यालय सदैव अग्रणी रहेगा। आप सभी की विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रति गहन रुचि एवं पशुपालन सेक्टर की महत्ता की जानकारी इस विश्वविद्यालय को और अधिक सकारात्मक निर्णय करने में सहायक साबित होगी। आज दीक्षा करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक गणों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं एवं बधाई देता हूं कि पशु चिकित्सा व्यवसायी के नाते भविष्य की उज्जवल संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा आज आपको प्रदत्त की जाने वाली दीक्षा एवं शुभकामनाएं आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होंगी। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह होने के नाते टीम राजुवास की इच्छा थी कि हम कार्यक्रम में हमारे पशुपालक भाइयों और बहनों की भी भागीदारी लें, क्योंकि वास्तव में विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाले सभी कार्य आप लोगों के लाभ के लिए ही संचालित किए जाते हैं। आप सभी ने आज विश्वविद्यालय के इस पुनीत अवसर पर बड़ी संख्या में पधार कर हमारा उत्साह वर्धन किया है। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय की ओर से मैं मेरे सभी साथी अधिकारियों, फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारियों का भी स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा टीम राजुवास के रूप में कार्य करने के कारण से ही आज ये विश्वविद्यालय विकास के इस स्तर पर पहुंचने में सफल हुआ है।
हरखू भाई, देखो मैं कया करूँ के मसो तो मेलो वजने दूजा उजड़ावे। इनी बात देखो, विकास रा भगोतिया चढ़ना सोरा कोनी वे है, क्योंकि आपा जाना है कि करनो सोरो हुए पण करावनो दोरो हुए। पण सुपने ने साचो कर दिखायो राजुवास रे कुलपति प्रोफेसर कर्नल एके गहलोत साहब। और देखो जिया रूख रे आश्रे बेल बदे नी, इनी बात देखो विश्वविद्यालय विकास रा भगोतिया चढ़ रहे है।
अरे रुक्मी काकी, थाने और पशु पालका ने सुनाओ कि देखो बठे पावना पधार्या हा डॉक्टर उमेश चंद्र जी शर्मा। आप नई दिल्ली माए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद रा अध्यक्ष है, वे इन दीक्षांत समारोह माए मुख्य अतिथि भी है। सुनो वे कहीं कहो।
मित्रों, मैं अभी देख रहा था कि राजुवास ने पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, कहीं ना कहीं देश के अंदर जितने भी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है उसमें कहीं ना कहीं राजुवास का जो अभी योगदान है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। बहुत काम उन्होंने किया है। एक कहीं ना कहीं ये जो व्यवसाय है, कहीं ना कहीं जो पशु चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से कहीं ना कहीं देश में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए काम करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मित्रों ये हमें बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें काम करने का मौका मिला। जैसा कि अभी अपने उद्बोधन में आदरणीय कुलपति महोदय ने कहा कि राजस्थान की कुल जीडीपी में लगभग 11% का योगदान पशुपालन का है और जो टोटल जीडीपी है कृषि का उसमें 50% योगदान उसमें कृषि का है। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका पशुपालन विभाग की है। आज मित्रों देश के अंदर कहीं ना कहीं चिंतन हमारे देश के राजनीतिज्ञों में, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे देश के सभी टेक्नोक्रेट्स, इस बात का चिंतन चल रहा है कि कैसे कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए, कृषि के माध्यम से किस प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। मित्रों, आज राजस्थान इसमें अपना एक जो देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना अदा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पशुपालन को जिस प्रकार से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास जो किया है। मैं अभी कुछ प्राध्यापकों से चर्चा कर रहा था, बता रहे थे कि विश्वविद्यालय के माध्यम से जिलों तक कहीं ना कहीं पशुपालन की एक्सटेंशन एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम भी राजुवास के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो आज जो यहाँ विद्यार्थी जो यहाँ आए हुए हैं या जो यहाँ से डिग्री करने के बाद जो कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि वो हमेशा एक ध्यान रखें कि वो जब गांव में पशु चिकित्सा कार्य के लिए जाएंगे तो उनको एक बात ध्यान रखनी होगी कि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं, वास्तव में जो गरीब किसान है, जो पशुपालक है, जिसके लिए, जिसको कहीं ना कहीं जिसके पशुपालन के माध्यम से जो अपना आजीविका भी चलाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने आर्थिक समृद्धि का रास्ता भी उसी के माध्यम से तय करता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को समझें और हम अपने आप को एक गर्व से कहें कि हम पशु चिकित्सक हैं। ये आपको ईश्वर ने मौका दिया है कि आप कहीं ना कहीं हमारे जो किसानों के लिए या गरीबी रेखा के जो नीचे खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर लाने के काम में आपका योगदान, कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग उसमें होगा। आप दो प्रकार से काम करते हैं, एक तो आप कहीं ना कहीं वो जीव जिसको आप कहीं ना कहीं उपचार के माध्यम से उसकी पीड़ा हरण का काम करते हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं दुआएं देता ही है। दूसरा मित्रों, उस जो पशुपालक जिस पशु के माध्यम से उसका उसकी आजीविका चलने वाली है, उसको दो वक्त का भोजन मिलने वाला है, उसको भी कहीं ना कहीं आप कहीं अपने माध्यम से अपने हाथों का उसका कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। इसलिए आप हमेशा आप ऐसा पवित्र काम करते हैं कि जो भगवान का दिया वो काम करे, इसलिए इस काम को आपको बहुत अच्छे से करने के लिए आवश्यकता है। आपका ये मैंडेट होना चाहिए कि जब भी आप गरीब किसान के लिए आप अपना हमेशा अपना काम करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कितना गर्व का विषय है कि आज आप यहाँ से जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के माध्यम से मैंने राजस्थान में देखा कि कि यहाँ बहुत सारी कुछ परिषद के माध्यम से पिछले समय में बहुत कॉलेजों की मान्यता को लेकर बहुत कुछ विषय थे, मैंने उनको भी ठीक करने का प्रयास किया है और आगे भी मेरा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की ओर से आपको हमेशा सहयोग रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया, उसके माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और देश में इस प्रकार का सिस्टम करें कि आने वाले समय में देश में वास्तव में कितने पशु चिकित्सकों की और आवश्यकता है, हमें किस क्षेत्र में और आवश्यकता होगी। इस बात के लिए आपके कुलपति महोदय जो हमेशा मेरे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सहयोगी साथी भी है और मेरे साथ परिषद में हमेशा उनका सहयोग रहता है, मुझे नए नए आइडिया उनके द्वारा प्राप्त होते हैं और वो लगातार हमेशा मैं उनसे जब बात करता हूँ तो हमेशा राजस्थान के किसानों के बारे में हमेशा इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने में हमेशा चिंतन करते हैं। उनका सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजवास को और आगे बढ़ाएगा। आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोग ये प्रतिज्ञा करें कहीं ना कहीं हम इस देश में पशु चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार लोगों को, किस प्रकार किसानों को हम कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्ध बना सके या उनके लिए काम कर सके। और हमारा ये मैंडेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम हमेशा ये चिंतन होना चाहिए कि हम किस प्रकार खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाएं और राजस्थान उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पशुपालन के लिए कॉलेज के लिए जो यहाँ से राशि दी अभी 7 करोड़ रुपए उन्होंने जयपुर पशु चिकित्सा विश्व महाविद्यालय के लिए किया है और भी आगे कई उन्होंने योजनाओं में माननीय कुलपति जी से कहा है कि इस क्षेत्र में जो भी विकास हो सकता है उसके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं उन्हें ऐसे ही मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में ये सरकार जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर राजस्थान सरकार गरीब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए जिस प्रकार से अपने कार्यक्रम चला रही है, मुझे लगता है सब धन्यवाद के पात्र हैं।
अरे रुकमी काकी, आप है डॉक्टर NS राठौड़, आप नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रा उप महानिदेशक है। आप दीक्षांत भाषण देवता थका के हो।
मैं सब छात्रों को और छात्राओं को जो आज जिन्होंने डिग्री ली है, गोल्ड मेडल लिया है, उनके पेरेंट्स को और सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहूंगा कि आज का दिन वाकई में एक दूसरे तरह का पर्व है और ये एक ऐसा पर्व है कि जिसमें हम एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है और आज आपको लगेगा कि आप अपना एक फेस चेंज करके दूसरे फेस में आपने एंट्री ली है, मगर ये दूसरा जो फेस है वो एक बहुत खतरनाक फेस है, आप ये मान के चलना, क्योंकि अभी तक आपको स्पून फीडिंग हो रही थी, क्योंकि जब भी छात्र कॉलेज में रहते हैं उस समय सब जने आपकी केयर करते हैं, गहलोत साहब से लेके आपके चीफ वार्डन से लेके आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक सब, और इस समय आपके पास सब कुछ होता है, केवल एक चीज नहीं होती। अगर हम सारा वर्गीकरण करें तो पहले वर्ग में ये देखा गया है कि आपके पास एनर्जी तो होती है, आपके पास टाइम भी होता है, मगर आपके पास धन नहीं होता। अब दूसरे जो वर्ग में आप चले गए हैं, जब आपको जॉब मिलेगा निश्चय ही, क्योंकि वेटनरी में जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, और जब हम ये कहते हैं कि साहब और ओवरऑल भी देश की अगर हम GDP में देखें तो वेटनरी और फिशरी करीब 4% का हिस्सेदार है, तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं, तो निश्चय आपको अब धन की भी कमी नहीं रहेगी। मगर इस युवा वर्ग में जब आप दूसरे फेस में जाते हैं उस समय दिक्कत ये रहती है कि आपके पास समय नहीं रहता। मैं ये चाहता हूं कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने जब ये अपने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था सबसे पहले छात्रों के लिए एक संदेश दिया था, उन्होंने 4 T दिए थे अगर आपको याद हो। पहला T था ट्रेडिशन, आपको अपनी जो भी आपके वंशवश जो भी आपकी पारंपरिक जो चीजें हैं उन चीजों को आपको ध्यान में रखना, उनको भूलना नहीं है। दूसरा T उन्होंने दिया था टेक्नोलॉजी, आज हमारा युग जो है वो एक प्रौद्योगिकी एंड तकनीकी से भरा हुआ है, उन सबको आपको साथ लेके चलना है। और तीसरा T उन्होंने जो दिया था वो टैलेंट, वो काम हमारे गहलोत साहब ने पूरा कर दिया है, आपको एक टैलेंटेड बना के भेजा है। तो चौथा T जो आपकी इंतजार कर रहा है वो है ट्रेडिंग, आज सारा देश ये चाहता है कि हमारा किसान जो है वो ट्रेडिंग करे, वो व्यापार करे। आपने देखा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बना दी गई है, आप जो पैदा कर रहे हैं उसके बाद उसमें प्रसंस्करण और जिसमें जो उसमें प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसको तो हमने इंडस्ट्रीज बनाई है, मगर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक सपना है और वो ये कहते हैं कि हमारे आने वाले जो छात्र हैं वो अपने ज्ञान से, वो अपने ट्रेडिशन से, वो अपने टैलेंट से हमारे किसानों को वाकई में व्यापारिक बना, व्यापार में लीन करेंगे, वो एक आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के कहने से एक कोर्स, हमारे जितने भी कोर्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के उनको हम सब रिवाइज कर रहे हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो वाकई में बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। मैं सारे युवा वर्ग से कहना चाहूंगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट रेडी, और इसमें जो रेडी है RED Y वो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, यानी कि आपको ये बताया जाएगा इस पूरे एक साल में, जैसे आपका 5 साल का कोर्स है BBSC का, तो एक साल पूरे में आपको किसी इंडस्ट्रीज के साथ भी भेजा जाएगा, 6 महीने आपके यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेटअप भी लगाए गए हैं। मेरे को बड़ी खुशी है कि वेटनरी की जितनी भी यूनिवर्सिटी उन्होंने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया है, हमने पूरे भारत देश में करीब 404 एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट सेटअप कर दिए, और उसमें क्या होगा कि 6 महीने हमारे छात्र जो रहेंगे वो वहां पर एक तरह का व्यापार करेंगे, उनको इस तरह की निपुणता दी जाएगी कि वो अपने महाविद्यालय में रहते हुए सब कुछ सीखे, अपने हाथों से करें। ये एक तरह की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। और उसके बाद फिर लास्ट के जो 2.5 महीने उस समय आप वो किसान के पास जाएंगे, किसान को बताएंगे। तो ये पूरा एक साल का जो कोर्स रखा है वो स्टूडेंट रेडी रखा है। और उसमें अभी मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने 5 हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में और हमारे फॉरेस्ट्री में। और उसके बाद हमारे जो 6 और बचते हैं, क्योंकि टोटल 11 हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, उनमें 6 में भी हम प्रयत्नशील है, हम उसको आगे करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा भविष्य आपके सामने है, मगर उसके साथ साथ आपके पास छात्र, अभी तक आप अपने कल्याण की बात करते थे, छात्र कल्याण निदेशालय होता है, मगर मैं आप कहना चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार ने भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, आपने देखा होगा उसका नाम बदल दिया। अब हम केवल एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि किसान के कल्याण के लिए भी हमें काम करने हैं। और आप देखा जाए तो जब हम 5 जनरली ये बात होती है कि जो खेती बाड़ी है, जो कि हमारी फार्मिंग है, उससे हम 5 F प्राप्त करते हैं। पहला F है हमारे पास फूड है, दूसरा हमारा फोडर है जो कि डायरेक्टली वेटनरी साइंस से जुड़ा हुआ है, तीसरा हमारा फ्यूल है वो भी आपकी वेटनरी साइंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके पास वेस्ट मटेरियल आ रहा है एनिमल्स का, उसके उसको हम फ्यूल के फॉर्म में काम में ले सकते हैं, चौथा हमारा फाइबर है, 5वां हमारा फर्टिलाइजर है। अगर हम इन 5 चीज को देखें तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े और इस देश के हमारे जितने भी किसान है उनके लिए सहयोगी साबित हों।
देखो रुक्मिका की कार्यक्रम हो, दीक्षांत समारोह हो, बढ़िया गुणिया लोगों ने डिग्रिया और स्वर्ण पदक देवण कार्यक्रम हो, छात्र भेड़ा भी घने हुआ। इन अवसर पर राजस्थान राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी और थाने अभिठा हवेला कि आप कुलाधिपति भी है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। आप इन अवसर पर प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं रो हौसलो बढ़ाती बेला आप उद्बोधन में कहो।
इस विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के अवसर पर बीकानेर में आप लोगों के बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हमारे राज्य के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण मानव संसाधन सिद्ध होंगे। दीक्षांत समारोह एक ऐतिहासिक अवसर होता है। इस मौके पर यहाँ विश्वविद्यालय का सपना, प्रतिबद्धता, नवाचार के साथ साथ शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत दिखाई दे रही है। राजस्थान पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी है। राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। राज्य में पशुपालन की ताकत इस बात में है कि इस क्षेत्र की विकास दर औसतन 4-6% रहती है, जो कि कृषि के अन्य क्षेत्रों की तुलना में हमेशा उच्च रही है। इस क्षेत्र में 90% श्रम महिलाओं द्वारा किया जाता है। राज्य के लगभग 70% ग्रामीण परिवारों की आय का साधन कृषि एवं पशुपालन ही है। ये अच्छी बात है कि ये विश्वविद्यालय पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए अनुसंधान और प्रसार के कार्य तीव्र गति से कर रहा है। मुझे जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय ने संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ भी कार्य करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आधुनिक तकनीक को राज्य के पशुपालकों द्वारा अपनाया जा रहा है। अतः वो दिन दूर नहीं जब ये विश्वविद्यालय देश के शीर्ष वेटरनरी विश्वविद्यालयों के बीच अपनी जगह बनाएगा। प्रदेश में स्वदेशी गोवंश की नस्लें विद्यमान हैं। राज्य में गाय के कुल दूध का 90% स्वदेशी गायों से प्राप्त होता है। स्वदेशी गोवंश के दूध की महत्ता पहले ही प्रमाणित है। इसी वर्ष अप्रैल में मैंने विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केंद्र कोडप देसर का भ्रमण किया था, जहाँ साहिवाल और कांकरेज जैसी नस्लों का स्वदेशी गोवंश भी मौजूद है। एक बात यहाँ के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि बिहार ही में छात्र संघों के चुनाव हुए हैं। सभी चुने गए प्रतिनिधियों को मेरी सलाह है कि वे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के परिसरों में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। परीक्षा की शुचिता एवं गंभीरता के साथ कोई समझौता न किया जाए। नकल मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाए। मैं एक बात इससे हटकर भी कहना चाहता हूँ, कृषि और पशुपालन का बहुत गहरा संबंध, और कृषि और पशुपालन का संबंध आपस में तो है ही गहरा, हिंदुस्तान के आम आदमी की जिंदगी से भी इसका बड़ा गहरा संबंध है। ये ऋषि प्रधान देश भी है, ये कृषि प्रधान देश भी है। जितने रोजगार के साधन हमको कृषि से मिलते हैं बाकी और किसी उद्योग से उतने नहीं मिलते। लेकिन अगर पशुधन कमजोर रह गया और कृषि धर्मी कमजोर रह गया तो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता। पशुओं की नस्ल 80 से अच्छी हो, दुग्ध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। खेती की उत्पादकता बढ़ाना और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना यह खेती की आवश्यकता है। किसानों के पशुओं का बीमा और किसानों की फसलों का बीमा किया जाना चाहिए और किसानों की फसलों के बीमा के लिए जो प्रीमियम दाखिल हो वो सरकार अपने खजाने से पूरा करे। देश की प्रगति के लिए मेरे अपने अनुसार कृषि का उन्नयन आधुनिकतम प्रणाली के साथ करना आवश्यक है और किसान को दैवीय आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो किए जाने चाहिए, यह भी आवश्यक है। किसान केवल उत्पादक नहीं है, किसान इस देश के अंदर सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी वही है। उसके जेब में दाम होगा दुकान अच्छी चलेगी, उसके जेब में दाम नहीं रहा तो दुकानदार मक्खी मारता रहेगा, क्योंकि खरीदार तो वो है जो बैठा गांव में और उसका पैसा। ऐसी कोई न कोई व्यवस्था हो कि किसान के जेब में पैसा पहुंचे, पूंजी का प्रभाव गांव की ओर किसानों की ओर कैसे बढ़े, अन्य योजना के साथ साथ इस पर भी बड़ा गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। पशु और किसान का जिंदगी मौत का संबंध है। मुझे घटना याद आ गई है, गाँव में मैं पढ़ता हूँ शायद इंटरमीडिएट में, हमारे घर पर दो बैल, एक बैल की मृत्यु हो गई और उस बैल की मृत्यु पर पिताजी बड़े धार मार मार कर रोए कि मेरी जिंदगी का एक सहारा उठ गया। कुछ ही दिन पहले मेरा छोटा भाई था बीमार पड़ा, मृत्यु हो गई। अपने छोटे बेटे की मृत्यु पर मेरे पिता की आंखों में मैंने एक भी आंसू नहीं देखा और उन्हीं पिता के सामने जब उनका बैल मरा तो फपक फपक कर रो रहे थे, फपक फपक कर रो। ये है संबंध, जितना डिग्री धारण करके यहाँ से जा रहे हैं, हम किसान की पीड़ा को भी समझें और जितना भी सेवा भाव से काम कर सकते हो काम को करें। मैं कल यहाँ पर कुछ चीजें देखी है, ई मॉडल देखा है कि अगर ये विश्वविद्यालय ई मॉडल लागू कर सकता है तो बाकी के विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के कुलपति जी को बधाई देता हूँ, यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, सबको बधाई देता हूँ, कर्मचारी हैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये सारा प्रतिफल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का नहीं है, सामूहिक श्रम शक्ति का ये परिणाम है। एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर दिया है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः डिग्री और स्वर्ण पदक धारक विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और उनको मेरी शुभकामनाएं।
तो देखो रुक्मी काके, दीक्षांत समारोह समापन घोषणा बाद में राष्ट्रगान साथ एक कार्यक्रम रो समापन हुयो।
हरकू भाई,
हाँ
देखो थानी मेहनत मने लागे सफल होगी, मारो तो जी सोर हो गयो, थे मौको चूकिया कोनी और ओ असर देखो माने लागे के मैं भी कोनी चूकिया।
हाँ,
हैं यहाँ लागन लाग गयो के चित्राम यहाँ अखियार सामने आउन लाग गया के मैं बैठे हाजिरा।
हाँ,
और देखो चौपाल रे मायने बैठा बैठा हगला मुंडा चिलकन लाग गया।
हाँ,
है और घर रे मायने जी को दिनेरी बात सुनता वेला नी।
हाँ,
आज बारो भी जी सोरो ये वाला के आज हरकू भाई बहुत मोटो काम कर दियो। देखो हरकू भाई जने ही मैं थाने समझदार क्यों
और हमें माने और रुक्मी काकी ने आगे दी रहो सा आपने करा में
राम राम, राम, राम सा।
मैं प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल एके गहलोत, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि पशुधन से समृद्ध राजस्थान को और संपन्न बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार साय 5:30 बजे से 6 बजे तक राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित आपके इस विश्वविद्यालय का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें अवश्य सुने एवं लाभ उठाए। ख्यातनाम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के ज्ञान से धीणेरी बातें मतलब अधिकतम पशुधन उत्पादन, आपकी समृद्धि और राजस्थान की उन्नति।
अबार आप सुन रिया था आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बाता। संयोजक श्री श्याम पवार, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभात थानवी और राम सहाय हर्षरी।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीणेरी बातें। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी सबली समस्या रो समाधान।
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।
रेडियो पर।
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।